ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं, किरण। जय श्री कृष्णा साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के पठन का ये 24वां भाग है। आपको बता दें कि 25वां भाग इसके बाद आने वाला है, और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ख़ास तौर पर इस 25वें एपिसोड के जिसमें भाग ने विचार और आशा की किरण भगवद गीता के पठन के बारे में ख़ास तौर पर हमें भेजिए। 25वें एपिसोड को हम कुछ खास थोड़ा सा उत्सव रूप देना चाहते हैं। उसके लिए आपके संदेशों की जो झालर है, जो सजावट है, वह बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रतीक्षा करूंगी कि आप अपने अपने सुंदर मैसेज नए तरीके से, कुछ क्रिएटिव तरीके से, या फिर जो भी मन में आता है उसको अभिव्यक्त करते हुए ज़रूर मेरे तक भेजेंगे। हम चाहते हैं कि अलग अलग आयु के लोगों की, अलग अलग वर्ग के लोगों की हम इसमें संदेश शामिल करें, ताकि हम समझ पाएं कि सचमुच जनमानस में गीता किस प्रकार से प्रतिष्ठित है। आज के कार्यक्रम में ध्वनि संदेश शामिल किया हुआ है, जो हमारा लक्ष्य था कि बच्चों को और युवाओं को भी श्रीमद् भगवद गीता के पठन में रुचि पैदा करना। तो आप सभी को बधाई कि छोटे बच्चे भी श्रीमद् भगवद गीता को सुनते हैं। याशिता शर्मा का भेजा हुआ एक संदेश मुझे मिला था, मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रति जो उनकी अभिव्यक्ति थी उसको आप तक पहुंचा रही हूं। याशिता शर्मा वंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा में रहती हैं और क्लास फर्स्ट में पढ़ती हैं और 5.5-6 साल की हैं, फिर भी वो निरंतर इसको सुनती हैं और रुचि लेती हैं। आप भी बच्चों को, घर में युवा या फिर छोटे बच्चे हैं, उनको ज़रूर सुनाइए। तभी ये जो परिश्रम हम कर रहे हैं, ये जो समय हम दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता को, सनातन धर्म को पुनः अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने का, वो सार्थक हो पाएगा। आपके सहयोग की पूरी अपेक्षा है। तो ज़रूर मुझे ध्वनि संदेश भेजिएगा जिसमें गीतोपदेश का महत्व हो, श्रीमद् भगवद गीता के पाठ को सुनकर आपको कोई विचार आए हों, आप लाभान्वित हुए हों, जीवन में परिवर्तन आया हो, और ज़रूर भेजिए। अपने बच्चों से ज़रूर बुलवाइए, एक तो उनका भय खुलता है और अपने आप को अभिव्यक्त करना भी सीखते हैं। तो ये इस बच्ची के संदेश में हम देख सकते हैं। तो पहले सुनते हैं याशिता शर्मा का ये संदेश, और उसके बाद भगवत गीता के पठन का हम आरंभ करेंगे। विवेचनाकार हैं जयदयाल गोविंद का।
मैं याशिता शर्मा क्लास फर्स्ट में हूँ। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। श्री कृष्णा किरण आंटी, मैं मम्मी के साथ गीता भी सुनती हूँ, मम्मी बताती है। श्री कृष्णा बहुत बड़े गॉड है
जी,
जिन्होंने अच्छी अच्छी सत्ता दी। श्री कृष्णा गोविंद, श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णा 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 श्री हरि, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बाय बाय।
मुझको कहो हे केशव सर्वज्ञ, भाषण आसन चलन में कैसा है स्थित प्रज्ञ, कैसा है स्थित प्रज्ञ, ललित ना हो कदापि नहीं कोई स्पृहा सुख सुमन सुवासुमी राग है न द्वेष जहां मोहने शेष नहीं लेश मात्र अस्थिरता जिसके आभास में शुभ से प्रसन्न हो न अशुभ से जो भय मान ऐसा स्थित प्रज्ञर में योग रस रास में ऐसा स्थित प्रज्ञर में योग रस रास में
यह सर्वत्राणि भी स्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। सर्वत्र अनभिस्नेहः का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि योगी में अभिस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री पुत्र भाई मित्र और कुटुंब वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हरेक वचन में उस मोह युक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता, इसलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति हो काम क्रोध आदि सारे विकारों की मूल है, इसीलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। शुभाशुभम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ तत् पद का दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं उन्हीं का वाचक यहाँ शुभाशुभम पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का संसार की किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके मन इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखलाई देती हो उसे शुभ और जो प्रतिकूल दिखलाई देती हो उसे अशुभ बतलाने के लिए यहाँ पर शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके साथ तत्पद का दो बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं अनंत हैं। उनमें से जिस वस्तु के साथ उस योगी का संयोग होता है उसके संयोग में उसका वैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। न अभिनंदति का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है, अतएव वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते रहते हैं और उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भित स्तुति नहीं करता। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है तो वह हर्ष का विकार नहीं है। न द्वेष्टि का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्यों को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर वे उसे द्वेष करते हैं। इसके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होता है। वे उस वस्तु को द्वेष भरी निंदा किया करते हैं, पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होता। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्वेग या विकार नहीं होता। उसका अंतःकरण हरेक वस्तु की प्राप्ति में सम शांत और निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेष पूर्ण निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुष की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी प्राणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है, तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष भाव नहीं है। उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न हो, जिनके अंतःकरण और इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी न होता हो, उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। इन दो श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आई है, फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें वह कैसे बोलता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यह साधारण बोलने की बात नहीं है। केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दम्भी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन दो श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार उन भावों से भावित जो वाणी होती है, उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसीलिए इनमें वाणी की स्पष्ट बात न कहकर मानसिक भावों की बात कही गई है।
निर्लिप्त जो कर्म का योगाचरण करे इन इंद्रियों द्वारा, जिसने मन से इंद्रियां जीती इंद्रियों से जो पुरुष न हारा, साथ रहे पंच इंद्रियों के, साथ रहे पंच इंद्रियों के, फिर भी पंच इंद्रियों से रहे न्यारा, साथ रहे पंच इंद्रियों के, फिर भी पंच इंद्रियों से रहे न्यारा। कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा, कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा।
दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 58। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है? इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसी समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कछुए की भांति इंद्रियों को विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना क्या है? जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेता है, किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना है, यही कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती ही रहती हैं। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता है। यहाँ सर्वशः पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषयों उपभोग से भी इंद्रियों को सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है। उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी वश में की हुई हैं कि उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है, और इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात्कार से विषय सेवन में लगा देती है।
कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे जैसे सारे भोगों से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञ रहे स्थिर ऐसे रहे वो अधर्म के भय से मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे वो आत्मविजय से।
आशा की किरण नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आया है पंचतंत्र की कहानियां, तो सुनना न भूलिएगा दोस्तों, किरण दी के साथ पंचतंत्र की कहानियां। आशा की किरण, यह है पॉडकास्ट आपका अपना, जहां पर आप और हम मिलकर जीवन को देंगे एक नए सूर्योदय की आशा की किरण। जी हां साथियों, इस कार्यक्रम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिंदगी को ले जाएं उम्मीद, आशा, अच्छी बातें, सकारात्मक बातें और ढेर सारे उत्साह की ओर। तो फिर हर रोज़ आशा की किरण में आपसे मुलाकात होती रहेगी, हम नए नए प्रयास जीवन को एक उत्थान देने की करते रहेंगे, ज़रूरत है आपके साथ की। तो मिलते रहिए आशा की किरण में, जो लेकर आऊँगी मैं आपकी दोस्त किरण आचार्य।